ओम शांति। पिछले दो दिनों से आप राजयोग मेडिटेशन सेशन कर रहे हैं। पहले सेशन में आपने स्वयं की पहचान प्राप्त की कि मैं कौन हूं, और दूसरे सेशन में आपने पिता परमात्मा की पहचान प्राप्त की जिसका मैं हूं, कौन? बच्चा। और आज हम पहचान प्राप्त करेंगे कि ये जो मैं कौन हूं, जो आत्मा है, ये आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे जोड़े, कनेक्शन की सहज विधि क्या है। लेकिन ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ही इस कनेक्शन की जरूरत ही क्या है। तो अगर हम कहें कि आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन इज लाइक अ चार्जिंग द बैटरी, चार्जिंग द सोल, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए कनेक्शन करना है। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग होंगे कि जो कहेंगे, बहन जी हमें चार्जिंग की भी जरूरत नहीं है। कहेंगे दुनिया में हमारा नेम और फेम है, नाम मान शान है, जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान भरपूर है, विज्ञान ने सुख सुविधाएं के जितने भी साधन तैयार किए हैं उन सब से मेरा घर भरा पूरा है, मैं चार्ज हूं, मुझे जरूरत नहीं है चार्जिंग की। बेशक एक्सटर्नली इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड हम भरपूर हो, लेकिन जीवन के दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं, एक इनर वर्ल्ड है और एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है। कहा ना, हमें क्या कहा जाता है इंसान को, ह्यूमन बीइंग। एक है बीइंग और एक है ह्यूमन बॉडी। बॉडी की सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ है, लेकिन अंदर में जब बीइंग बैठा है वहां का हालचाल क्या है। जैसे कहा कि चार्जिंग, तो चार्जिंग अगर मैं कहूं कि मैं चार्ज्ड हूं, कहने मात्र से हम चार्ज नहीं हो जाते हैं, देयर इज अ चेक पॉइंट। आज अगर समझो मैं किसी से बात कर रही हूं, फोन ऐसे हाथ में पकड़ा है स्मार्टफोन, और मैं किसी से बात कर रही हूं, बात करते करते मुझे कैसे पता चलेगा कि बैटरी इज अबाउट टू डिस्चार्ज। अगर मैं ऐसे सामने रखूं तो नंबर ऑफ बार्स देख के मुझे पता चलता है, या वो ग्लास कितना खाली है कितना भरा है उसको देखकर पता चलता है। लेकिन मैं देख नहीं रही हूं, मैं बात कर रही हूं किसी से, एंड व्हाइल स्पीकिंग मैं कैसे पता करूं कि मेरी बैटरी इज अबाउट टू डिस्चार्ज। क्या साइंस है उसके, अनुभव होगा ना क्या होता है, क्या साइंस होते हैं? हाँ, हीट, हीट अनुभव होता है, और इरिटेशन होता है, और देयर आर थ्री साइंस कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। नंबर वन, हम बात कर रहे हैं लेकिन बैटरी अगर अबाउट टू डिस्चार्ज है तो हमें मोबाइल जो हाथ में पकड़ा हुआ है वो गर्म लगने लगेगा, स्पेशली इन द एरिया ऑफ वेयर द बैटरी इज। जिस एरिया में बैटरी है उस मोबाइल के अंदर, वहां पर स्पेशली हमें ज्यादा गर्म महसूस होने लगेगा। नंबर वन। नंबर टू, बैटरी अबाउट टू डिस्चार्ज में है लेकिन फिर भी यूज कर रहे हम, तो इट इज डिफिकल्ट टू कैच द सिग्नल एंड देयरफॉर सिग्नल स्ट्रेंथ बिकम्स वीक. सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक और वॉल्यूम डाउन. तो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक है, वॉल्यूम डाउन है, और जैसे का वो हीट लग रहा है तो इरिटेशन हो रहा है. इन तीन कारणों से फिर क्या होता है पता है, हम भले बात तो कर रहे हैं लेकिन हम जो बात कर रहे हैं सामने वाले को एग्जैक्टली वैसा ही सुनाई नहीं पड़ रहा है. कटकट होके सुनता है वो. न सिर्फ वो भी जब मेरे से बात करता है तो मुझे भी एग्जैक्टली जो वो बोल रहा है वो नहीं सुनाई पड़ता है, कट कट होकर. और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. और इतनी देर में बैटरी अभी तो अबाउट टू डिस्चार्ज थी, डिस्चार्ज हो गई, हम डिसकनेक्ट हो गए. तो कैसे डिस्कनेक्ट हुए हम? मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कनेक्ट हुए. अब क्या क्या ख्याल चलेंगे? देयर इज नो एंड, है ना? ये तीन साइन है व्हेन बैटरी इज अबाउट टू डिस्चार्ज. अब हम अपने जीवन में देख लें, क्या ये तीन साइंस, ये तीन निशानियां हमारे जीवन में दिखती है? दिखती है. कैसे दिखती है बताओ? हम छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे तुच्छ ट्रिवियल मैटर्स गर्म हो जाते हैं, चाहे गुस्से के नाम पर, चाहे जेलसी के नाम पर, चाहे टेंशन के नाम पर, चाहे वरी के नाम पर, चाहे ईगो के नाम पर, चाहे नफरत के नाम पर, चाहे ग्रज के नाम पर, रिजेंटमेंट, व्हाटएवर. नेगेटिव लिस्ट आपको पता है पूरी. इसमें से कोई एक कारण बनता है हमारे गर्म होने का. नंबर टू, हर दो व्यक्ति के बीच हर दो तीन दिन के बाद, मतलब जो डायलॉग चलती है, इंटरेक्शन चलता है, हर दो तीन दिन के बाद एक डायलॉग कॉमनली रिपीट होता रहता है. और वो कौन सा डायलॉग है? आप मुझे समझते क्यों नहीं हो? और सामने वाला भी सेम रिपीट करता है, आप क्यों नहीं समझते हो मेरे को, आप मुझे हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हो. दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हो. वो कहता है आप मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हो. और ये मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा लंबा चली तो जो हम ऐसे थे हम ऐसे हो जाते हैं, डिसकनेक्ट हो जाते हैं. ये क्या बता रहा है? हम चार्ज्ड हैं, हम चार्ज्ड हैं. तो सिंपल कि चार्जिंग की जरूरत है. भले एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमने कितना ही कुछ नहीं कमा लिया हो लेकिन इंटरनल वर्ल्ड की हालत तो दिख रही है सबको. और इसलिए जिस किसी को भी लगता है मेरे जीवन में ये बातें हैं, मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करने की अर्जेंट नीड है. आई नीड टू चार्ज अर्जेंटली द सोल बैटरी. तो क्लियर, चार्जिंग क्यों करना है, कनेक्शन क्यों करना है. अब आते हैं कनेक्शन पर. पहला लेसन में आपने समझ लिया कि आज दिन तक जिसको मैं समझता रहा वो वास्तव में मेरा था, लेकिन गलती से अज्ञानतावश हर मेरा को मैंने मैं कर दिया था. और उस चक्कर में जो रियल मैं था उसको मैं भूल गया था. इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन, लेकिन मैंने कहा मैं इंजीनियर। रिसर्च करना मेरा प्रोफेशन, लेकिन मैंने कहा मैं रिसर्चर। माताजी या बहन जी या कुछ भी है मेरा रिलेशन, लेकिन कहा नहीं मैं माताजी मैं बहन जी। लड़की या लड़का या मेरा जेंडर, लेकिन नहीं कहा मैं लड़का मैं लड़की। सुनीता या सुनील मेरा नाम, लेकिन कहा नहीं मैं सुनीता मैं सुनील। हिंदू या मुस्लिम मेरा धर्म, मैंने कहा नहीं मैं हिंदू मैं मुस्लिम। इंडियन अमेरिकन मेरी नेशनलिटी, लेकिन मैं कहा नहीं मैं इंडियन मैं अमेरिकन। था वो मेरा, मेरा धर्म मेरा जेंडर मेरा नाम मेरी मेरा प्रोफेशन मेरी नेशनलिटी, लेकिन उस मेरा मेरे को मैंने कहा मैं। और जब मेरा को मैंने मैं बोल दिया तो असली मैं को भूल गए। लेकिन जब यहां आए परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग आपके सामने रखा गया तो राजयोग से पता चला कि मैं वो नहीं जो आज तक समझता आया। मैं ये शरीर नहीं, लेकिन ये शरीर मेरा है और मैं तो आत्मा हूं जो शरीर के भीतर बैठी हूं इसको चला रही हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। लेकिन आज दिन तक इसको भूले हुए थे तो इसकी स्मृति में नहीं जी रहे थे। कौन सी स्मृति में जी रहे थे? जो जो मैंने अक्वायर किया, मेरा मन अक्वायर किया ना हमने उसको, तो जो जो अक्वायर किया उस स्मृति में जी रहे थे। और जो जो अक्वायर किया उस स्मृति में जीना ही उसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि बॉडी लेकर और सब कुछ पहले बॉडी अक्वायर किया, पहले बॉडी अक्वायर किया ना। देखो घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो हम सबको खुशखबरी देते हैं रिलेटिव्स को कि बच्चे ने जन्म लिया है, लेकिन कुछ मास पहले की खबर क्या होती है? बच्चा गर्भ में पल रहा है। और उसके कुछ मास पहले की खबर क्या होती है? गर्भ ठहरा है। तभी बच्चा नहीं बोलते आप, कंसेप्शन ओनली, शी इज प्रेग्नेंट, इतना ही होता है। बच्चा गर्भ में पल रहा नहीं बोलते, गर्भ ठहरा है। मानो एक मास का पिंड जो ठहर गया है गर्भ में, अब उसका मल्टीप्लीकेशन 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 होता रहेगा और विद द हेल्प ऑफ दैट मल्टीप्लीकेशन वो मास का पिंड ह्यूमन बॉडी का फॉर्म ले लेगा। एंड देन दैट एनर्जी विल एंटर। माताओं को अनुभव है, हलचल होती है। तो बॉडी भी तो अक्वायर किया ना, तो बॉडी अक्वायर करके फिर बहुत कुछ अक्वायर किया, उसके नशे में रहने लग गए, उसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। और उसमें तो सभी ने बॉडी अक्वायर किया, हर आत्मा ने बॉडी अक्वायर किया, और हर आत्मा ने बॉडी अक्वायर करके नाम मान शान पोजीशन डिग्री आदि सब अक्वायर किया। और अब हर कोई उस नशे में, आई एम सो एंड सो। अगला भी कहता आई एम सो एंड सो। तो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आई एम सो एंड सो आई एम एंड सो एंड सो टकरा रहे हैं आपस में, ईगो क्लैश हो रहा है। दैट इज नोन एज बॉडी कॉन्शियसनेस। ईगो क्लैशेस इसीलिए हो रहे हैं। ईगो को खत्म करना है, मतलब पूरी जो लिस्ट है निगेटिविटी की वो ईगो से जन्म लेती है। इसलिए जड़ को ही खत्म कर दो, और जड़ को ही खत्म कर दो मना, अब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं जिए, अब हम सोल कॉन्शियस होकर जिए, आत्म स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूं। लेकिन ये समझ आ जाने के बाद भी और डिजायर होने के बाद भी कि मुझे बात समझ में आ गई है, इसके बेनिफिट मुझे समझ में आ गए हैं, सो आई विश टू कीप माई सेल्फ टू स्टेबलाइज माई सेल्फ इन दैट सोल कॉन्शियसनेस। लेकिन अगेन अनुभव कहता है, बहन जी मुझे बात समझ में भी आ गई है, मेरी दृढ़ इच्छा भी है कि मैं आत्मसमृद्धि से जीवन जीऊं, पर आत्मसमृद्धि में अटेंटिवली अपने आप को एस्टेब्लिश करता तो हूं, लेकिन फिर पता ही नहीं चलता मैं कैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में चला गया, शिफ्ट हो जाता हूं। होता है, आपने किया होगा दो दिन में अभ्यास, कि कोशिश कर रहे हैं, समझ आ गई है, दृढ़ इच्छा भी है, लेकिन विदाउट माय नोटिस आई शिफ्ट फ्रॉम सोल टू बॉडी कॉन्शियसनेस। व्हाई दिस इज हैपनिंग? तो क्या उत्तर है इसका? क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर है, आत्मसमृद्धि अभी तो जन्म लिया है ना इसने, अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वो बॉडी की समृद्धि स्ट्रांग होके बैठी है। समझ में आ रहा है? वो तो वर्षों से क्या, सदियों से, सदियों से हम बॉडी कॉन्शियस होकर जी रहे हैं। एंड सो हर बार मैं एक चीज अक्वायर करता हूं, मेरा इंट्रोडक्शन चेंज हो जाता है, एंड सो। तो वो स्मृति क्या हो गई है? स्ट्रांग हो गई है। और ये स्मृति तो अभी जस्ट शुरुआत की है ना, तो अभी इसमें इतनी स्ट्रांग स्ट्रेंथ नहीं है। इसको हमें क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है। ये स्ट्रांग नहीं होने के कारण ये फिसल जाती है और वो वाली आ जाती है। हमेशा जब दो जन लड़ रहे होते हैं, विजय किसकी होती है? जो स्ट्रांग है। देयर इज अ चेरोकी लेजेंड कि एक ग्रैंड फादर है, वो अपने ग्रैंडसन को टीचिंग दे रहा है लेसन लाइफ की। कहता है कि यहां पे एक लड़ाई चल रही है हर एक के अंदर में, और वो बहुत भयंकर लड़ाई है, और वो लड़ाई दो लोमड़ियों के बीच है, टू वुल्फ्स। यू माइट हैव हर्ड दिस स्टोरी इन द इंटरनेट, इफ यू गो यू विल फाइंड इट। तो दो वुल्फ की लड़ाइयां चल रही है लोमड़ियों की, और दो में से एक काली है एक बुरी है, और काली है बुरी है मतलब क्या है? ईगो, एरोगेंस, सेल्फ पिटी, ग्रीड, रिजेंटमेंट, एंगर, एनवी, ओ होल नेगेटिव लिस्ट। और दूसरी वाली सफेद है, अच्छी है, मतलब जॉय, पीस, कंटेंटमेंट, कंपेशन, मर्सी, कोऑपरेशन, हैप्पीनेस, लव, ऑल दिस पॉजिटिव लिस्ट। तो ग्रैंडसन को ग्रैंडफादर बता रहा है कि यहां वो दो बैठे हैं लोमड़िया, उनकी लड़ाई चल रही है, बहुत जबरदस्त फाइटिंग चल रही है। तो बच्चा थोड़ी देर सोचता है और फिर ग्रैंडफादर को क्वेश्चन करता है, ग्रैंडपा हु इज गोइंग टू विन? विजय किसकी होने वाली इन दोनों में? लड़ाई है मना, एक की हार एक की जीत। तो बच्चा पूछता है कौन जीतेगा? ध्यान से सुनना ग्रैंडफादर का आंसर, वन होम यू विल फीड, जिसको आप खिलाओगे वो जीतेगा। क्योंकि जिसको खिलाओगे वो स्ट्रांग बनेगा, जिसको नहीं खिलाओगे वो वीक रह जाएगा, और वीक और स्ट्रांग की जब लड़ाई चलेगी तो वीक वाला हार जाएगा, स्ट्रांग वाला जीत जाएगा। तो अभी हमारी वही लड़ाई है यहाँ पे कि बहन जी समझ में तो आ गया कि हमें अभी सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज करना, स्थित रहना है, लेकिन बार बार हम उधर चले जाते हैं। तो इसकी क्लियरिटी ये है कि क्यों हो रहा है, वो बहुत लंबे समय से है तो स्ट्रांग होके बैठी है, और ये तो अभी जस्ट शुरुआत की है तो अभी कमजोर है। तो अब हमें क्या करना होगा? इसको स्ट्रांग बनाना है ना। तो क्या कहा था ग्रैंडपा ने, कौन जीतेगा? इसको जिताना है, स्ट्रांग बनाना है मतलब इसको जिताना है। बॉडी कॉन्शियसनेस को मुझे ड्रॉप कर देना है, जीरो पे लाके देना है, खड़ा कर देना है, और ये जो अब तक जीरो पे थी इसको क्लाइमेक्स तक पहुंचाना है, तो इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको फीड करना पड़ेगा, और उसको फीड करना बंद करना पड़ेगा, है ना। इसी चीज को हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हर मानव के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं, एक दैवी और एक आसुरी, इन दोनों की लड़ाई चल रही है। तो वो वास्तव में क्या है, दैवी प्रवृत्ति की विजय माना पूरी पॉजिटिव लिस्ट। तो वो विजय प्राप्त हो उसके लिए है आत्मस्थ होना, आत्मस्मृति के साथ जीना, हर एक दूसरे के कनेक्शन में जब आ रहे हैं, when we are connecting to people, don't connect on the basis of what I have acquired, I'm so and so, उस बेसिस पे नहीं कनेक्ट होना है। Who am I, the being, आत्मा आत्मा से बात करे, आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा के जो गुण हैं, सुख शांति प्रेम खुशी जो बताए ना आपको ओरिजिनल क्वालिटी से आत्मा की, वो रेडिएट करते हुए मिले, ये अटेंशन रखे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्मृति मजबूत होगी, लेकिन उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। क्यों, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूं, आई एम वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, लेकिन मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं मैथमेटिक्स में स्ट्रांग रहूं, बाकी भले सब्जेक्ट में कमजोर हूं उसको कोई परवाह नहीं है। क्यों, पिताजी मुझे अपने बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, नौकरी नहीं कराना चाहते हैं, मेरे बिजनेस में रहे मेरे साथ, तो इसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन, तो मुझे मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। व्हाट ही विल डू, कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे मेरे लिए, वो उनको दिख रहा है मैं वीक हूं मैथमेटिक्स में, लेकिन वो चाहते हैं मैं मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनूं, तो वो क्या करेंगे, करेंगे ना कुछ, तो आप करते हैं ना इसे, क्या करते हैं, क्या करते हैं, नॉट ओनली द प्रैक्टिस, आप उसको ट्यूशन लगा देंगे। और ट्यूशन लगाना मीन्स क्या, ट्यूशन लगाना मतलब उस सब्जेक्ट के टीचर से कनेक्ट कर देना। मैथमेटिक्स में कमजोर हूं तो मैथमेटिक्स वाले टीचर के साथ ट्यूशन लगाएंगे, अर्थात बच्चे को मैथमेटिक्स के टीचर से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी स्कूल में एक पीरियड में मैं कनेक्टेड हूं उस टीचर से फॉर 45 मिनट्स, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर मी, तो मेरा क्या कर रहे, वो टाइम पीरियड। एक होता है कि मैं खुद ही प्रैक्टिस करूं, बेटा पढ़ो इसको घंटा भर पढ़ो, दो घंटा भर पढ़ो, लेकिन कुछ नहीं समझ रहा है, तो जो समझदार है मैथमेटिक्स में उसके साथ कनेक्शन करा दो ना, तो वो बार बार उसको वैरायटी वे में उन्हीं नियमों को उन्हीं फार्मूला को उन्हीं सूत्र को बार बार अलग अलग तरीके से समझाता रहेगा, तो उसका असर पड़ता रहेगा उस पर, और उसकी भी थिंकिंग उस प्रकार से चलने लगेगी, और वो उस प्रकार से थिंक करते करते उसमें माहिर हो जाएगा। दिस इज द ओनली वे टू कनेक्ट, द वन हु इज ऑलवेज स्ट्रांग इन दैट। सिमिलरली मेरी सोल कॉन्शियसनेस वीक है, तो मुझे सोल कॉन्शियसनेस को मैं अपने आप प्रैक्टिस करती रहूं, जैसे कहा बच्चे को छोड़ दिया, बट उसमें भी देखा उतनी सफलता नहीं है, तो मैथमेटिक्स टीचर से कनेक्ट करवा दिया, क्योंकि संग का रंग लगता ही है, तो उसके संग में रहते 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 वो मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूलास फटाफट उसको याद हो जाएंगे, प्लस माइनस करने में होशियार हो जाएगा। तो मैं सोल कॉन्शियसनेस में वीक हूं, तो मुझे भी कोई ऐसे से कनेक्ट होने की जरूरत है जो सोल कॉन्शियसनेस में बहुत बहुत स्ट्रांग है, और वो कौन है, परमात्मा। क्योंकि देखो परमात्मा को क्या कहते हैं, सत्य चित्त आनंद। और आत्मा को क्या कहते हैं? सत चित्त आनंद स्वरूप। स्वरूप माना बैटरी। और भगवान के सामने, परमात्मा के सामने हमने बैटरी है ही नहीं ना, वो तो पावर हाउस है, वो तो ओशन है, वो तो सूर्य है, वो सागर है, वो सूर्य है, पावर हाउस है। तो उसके लिए हमने स्वरूप नहीं लगाया। और वो सागर है मतलब ही वो कभी खाली नहीं होता है ना, डिस्चार्ज नहीं होता है ना। हम बैटरी है माने डिस्चार्ज होते हैं। और हमारी बैटरी डिस्चार्ज का मीनिंग क्या है? हमारे बैटरी डिस्चार्ज का मीनिंग है आत्मस्मृति नील हो जाना। और हमारे बैटरी चार्ज होने का क्या प्रूफ है? हमारी आत्मस्मृति क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है। यह बैटरी चार्ज है कि सदा ही आत्मस्मृति है, मतलब मेरी बैटरी चार्ज है। लेकिन चांसेस है मेरी, क्योंकि बैटरी है तो यूज हो रही है, शरीर के अंदर है तो शरीर के संग में है, तो जैसे पहले ही का संग का, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में इसकी मार्जिन है, वो आती रहती है, आती रहती है। और बॉडी कॉन्शियसनेस में आते आते एक दिन आत्मा की स्मृति नील पे चली जाती है और बॉडी कॉन्शियसनेस क्लाइमेक्स पे चला जाता है, जो आज की है स्थिति, जो आज की स्थिति है। तो वो बैटरी नहीं, वो पावर हाउस है। मतलब क्योंकि वो अजन्मा है, उसका परिचय प्राप्त किया ना, वो अजन्मा है। तो जब वो शरीर में आता ही नहीं, उसको मार्जिन ही नहीं है बॉडी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने की। हमको मार्जिन है और इसलिए हम शिफ्ट होते रहते हैं, और शिफ्ट होते होते बॉडी कॉन्शियसनेस के क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं और आत्मसमृद्धि जीरो। लेकिन वो तो अजन्मा है, वो तो अनंत है, वो तो अपरिवर्तनशील है। तो उसकी जो सोल की स्मृति है सदा कायम है। और इसलिए, इसीलिए सतचित शब्द आनंद जो मैंने बोला, कैसे सतचित आनंद अपने आप में बहुत बड़ी डेफिनेशन है और बहुत सिंपल भी। थ्री वर्ड्स, सत चित आनंद, मीनिंग क्या है? कम टू द मिडिल पॉइंट, बीच वाले शब्द पे आ जाइए। चित्त कॉन्शियसनेस, जिसकी कॉन्शियसनेस में सदा रियलिटी होगी, सदा प्योरिटी होगी, सदा ट्रूथफुलनेस होगी, वो ही आनंद को एक्सपीरियंस करेगा। इधर सत्य है, इधर सत्य है, इधर आनंद है, बीच में चित्त। कि हम जिस प्रकार की कॉन्शियसनेस में जिएंगे, जिस कहते हैं चित्त वृत्ति, चित्त में क्या चल रहा है, तो जिस प्रकार की कॉन्शियसनेस में जिएंगे उस प्रकार की हमारी स्थिति। तो इस सत्य चित्त आनंद शब्द में क्लियर डेफिनेशन दे दी गई है कि कॉन्शियसनेस में अगर ट्रू है, ट्रू यहाँ का ना सत्य, अगर सत्य विराज रहा है कॉन्शियसनेस में, तो हम आनंद की स्थिति का अनुभव करेंगे, हमारी स्थिति आनंदमय होगी। लेकिन अगर हमारे चित्त में सत्य के बदले असत आ गया, रियल के बदले अनरियल आ गया, प्योरिटी के बदले इम्प्योरिटी आ गई, तो फिर इधर जो आनंद लिखा है ना, आनंद की स्टेज के आप अधिकारी हो ही नहीं। आप आनंद की स्टेज के अधिकारी तभी हो जब आप अपनी रियल कॉन्शियसनेस में जीते हो, जब अपने प्योर कॉन्शियसनेस में जीते हो, जब आप अपने ट्रू कॉन्शियसनेस में जीते हो, अर्थात ही आत्मस्मृति। क्योंकि ये सच्चाई है, आत्मा के लेसन से पता चला ना कि आत्मा और शरीर, शरीर तो मर जाने वाला है लेकिन सदा कायम कौन रहने वाली है, तो वो ट्रू है। तो उसकी स्मृति में जिएंगे तो ब्लिसफुल स्टेज हमारे से दूर नहीं है। आज ब्लिसफुल स्टेज इसलिए दूर है कि हम आत्मस्मृति से बहुत दूर है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो समझ मिली, जब जागो तब सवेरा, ऐसे ही कहते हैं ना। तो अभी तो समझ मिल गई, तो अभी मुझे स्मृति में रहना है। तो देखा कि जब स्मृति में रहने का अभ्यास करती हूँ, बार बार फिसल जाती हूँ, बार बार फिसल जाती हूँ। तो मुझे उस परमात्मा से कनेक्ट होना है जिसके चित्त में सदा सत्य है, और इसलिए वो सदा आनंद का सागर है। और आनंद का बाई प्रोडक्ट करुणा, कंपैशन। इसलिए उसको करुणा आती है कि जो अपनी आनंदमय स्थिति गंवा के बैठे हैं, उनको जाके जीवन की सच्चाइयों से परिचित करा दूं। इसलिए वो आता है और हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराता है। तो दो बातों से तो परिचित करा दिया कि आप देह नहीं, शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। और आज दिन तक आपने अपनी अपनी भावना के अनुसार किसी देहधारी को जो परमात्मा बना के बैठे थे, उस चक्कर में आप रियल परमात्मा को भूल के बैठे थे। तो रियल परमात्मा कौन है वो भी बता दिया कि आत्मा ज्योति बिंदु, मैं परमात्मा भी ज्योति बिंदु, आत्मा स्वरूप है और वो सागर है। तो आप सच्चित आनंद स्वरूप हो, मैं सच्चित आनंद सागर हूँ। तो कनेक्ट टू मी, तभी आपकी ये आत्मस्मृति क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो उस स्ट्रांग कनेक्शन के लिए, उस आत्मस्मृति को स्ट्रांग करने के लिए परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और ये कनेक्शन मतलब चार्जिंग। सो वेरी क्लियर व्हाई टू कनेक्ट एंड होम टू कनेक्ट। कनेक्ट क्यों होना है और क्यों उसी को होना है, दोनों कारण क्लियर हो गए। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, अब जब उसको कनेक्ट होना है तो कोई शरीर की जरूरत है क्या? हमको कौन सी स्मृति को स्ट्रांग करना है? आत्मस्मृति। शरीर की स्मृति तो है, उससे तो दूर होना है। इसलिए इस कनेक्शन में देह और देह से संबंधित आसन, प्राणायाम, क्रियाएं आदि की जरूरत नहीं है, मंत्र माला मूर्ति आदि की जरूरत नहीं। ये तो मन से मन का कनेक्शन है। गीता में बहुत सुंदर शब्दों में कहा, तीन बातें आई हैं गीता में। एक है मन मना भव। भगवान आत्मा से, अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ। मैं बुद्धिम निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। अर्थात देह और देह से संबंधित जितने भी धर्म हैं, उन सबको सैक्रिफाइस कर दो, त्याग दो, सिर्फ और सिर्फ मुझ एक के शरण में आओ। ना तो क्वेश्चन अराइजेस, क्यों भगवान आत्मा को ऐसे कह रहे कि सिर्फ मेरे में मन लगाओ, बुद्धि मेरे में लगाओ, सिर्फ मेरे में? बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल रेज क्वेश्चन, भगवान भी बड़ा स्वार्थी है, बस मेरे को ही याद करो, उनसे ही हमारी दुनिया चल जाएगी क्या? इतने सारे हमारे कारोबार होते, सभी से कनेक्शन रखना पड़ता है, बस उसको ही हम याद करते रहे, वो भी तो फिर स्वार्थी हुआ। नो, ही इज नॉट स्वार्थी, बिकॉज ही नोस। आप जिनसे भी कनेक्ट हो रहे हो वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, और अगर उनसे ही कनेक्ट होते रहोगे तो आज तो बॉडी कॉन्शियसनेस क्लाइमेक्स में पहुंचा है, सुपर क्लाइमेक्स पे पहुंच जाओगे, और सुपर क्लाइमेक्स में पहुंच जाओगे, और परेशान आप ही होते रहोगे, फिर मेरे को रिक्वेस्ट करते रहोगे, रोते रहोगे, पुकारते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, मैं क्या करूंगा फिर? जो सही मेथड है मैं वही बताऊंगा ना आपको। एंड दैट इज व्हाई ही सेज, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन रियल कॉन्शियसनेस, वो आनंद की स्थिति में इसलिए रहता है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरे से कनेक्शन रखो। देह के धर्म छोड़ो। अब देह के धर्म छोड़ना मतलब क्या? वो सभी धर्म जो हम सबको मतभेद में ला रहे थे, हमको अलग कर रहे थे, हमको जुदा कर रहे थे, उनको छोड़ो। तो कौन हमको मतभेद में ला रहा था? मैं हिंदू, आप मुस्लिम, हम अलग अलग, है ना? मैं इंजीनियर, आप क्लर्क, अलग अलग, यही हो रहा था। लेकिन मैं आत्मा, आप भी आत्मा, मेरा स्वधर्म भी शांति प्रेम खुशी, आपका स्वधर्म भी शांति प्रेम खुशी। तो कोई गलत बात कह रहे क्या भगवान? राइट बात कह रहे ना, कि जो तुमको जुदा कर रहा था एक दूसरे से, उनको छोड़ो, लेकिन जो आपको मिला रहा है उसमें स्थित हो जाओ। तो आत्मस्मृति माना, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, खुशी मेरी पूंजी है, ये सारे गुण वो रेडिएट करते चलो, स्वधर्म में टिको। और उस स्वधर्म में टिक कर मेरे से कनेक्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि कनेक्शन होने के लिए व्हाट इज नेसेसरी, कनेक्शन होने के लिए नेसेसरी चीज क्या है? क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन है? शरीर और शरीर का कनेक्शन नहीं है, ये मन बुद्धि का कनेक्शन है ना। मामे कम बोला ना, मन मना भव बोला ना, मई बुद्धि निवेशय बोला ना, मन मेरे में लगाओ, बुद्धि मेरे में लगाओ, शरीर मेरे में लगाओ, ऐसे तो नहीं बोला ना। तो शरीर नहीं लगाना, मन बुद्धि लगाना है। तो मेरा मन बुद्धि उससे जाके कनेक्ट हो, उसके लिए व्हाट इज नेसेसरी? यस, दैट इज नेसेसरी, बट व्हाट इज इनसाइड दैट? व्हाट इज इनसाइड व्हाट? व्हाट प्रैक्टिस? वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट इज नीडेड फॉर कनेक्शन? जब मन से कनेक्ट होना है तो मन क्या है? सोचता है। मन क्या है? वाइब्रेट होता है। तो सोच की वेव क्रिएट होती है, एंड ईच वेव हैज गॉट वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, व्हाट एवर यू से। तो जब वेव्स, सेम वेव्स गेट्स कनेक्टेड, means waves having the same wavelength or same frequency, they get connected. लेकिन अगर wavelength अलग है, अगर frequency अलग है, तो connect होती है? नहीं होती है। अब मुझे किससे connect होना है? परमात्मा से, जो सदा आत्म स्वरूप में है, वो body के भान में है ही नहीं, जो सदा जागती ज्योत है, और जो सदा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? प्रेम वाली फ्रीक्वेंसी है, शांति वाली फ्रीक्वेंसी है, खुशी वाली फ्रीक्वेंसी है, आनंद वाली फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे उससे कनेक्ट होना है तो पहले मुझे उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आना पड़ेगा? यस यस, काली वाली साइड में, वो तो साइड हो ही गई, हम तो अभी सफेद वाली अच्छी वाली बुल्ब को क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। आत्मस्मृति में हमें स्थित रहना है। तो मैं उस स्थिति में आ जाऊं और फिर उसको कनेक्ट हो तो कनेक्शन होगा, नहीं तो नहीं। जैसे रेडियो में कोई स्टेशन पर मुझे ट्यूनिंग करना है तो मुझे पता होना चाहिए, विविध भारती फला स्टेशन पर आता है और इस टाइम पर आता है, तो इस टाइम पे फला स्टेशन पे, वो तो उसने उन्हें ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है। But I need to tune my radio set in that vibration, उस frequency पे, तब जाके हम connect होंगे। तो वहां से जो release हो रहा है, मैं उसको सुनूंगी, समझूंगी, जो भी है, means connection तभी establish होगा। Same way, in order to get connected to him, उससे हम connect हो जाए, उसके लिए जरूरी है उसकी जो frequency है, उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को लेकर आऊं। लेकिन कितनी विडंबना है, जो उस भगवान से जुड़ने के लिए मुख्य बात है, उसी बात को इग्नोर करके हम सिर्फ कर्म कांड में फंसे हुए हैं। भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड रिचुअल्स टूल्स तैयार किए गए भगवान के लिए, उनके पीछे बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है, बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग है। लेकिन जैसे कहा ना, मैं को मेरा मेरा बोलते गए, मैं भूल गए, अपनी अपनी आस्थानता सबको परमात्मा बोलते गए, परमात्मा को भूल गए। ऐसे ही रिचुअल्स को परफॉर्म करते गए, उसकी मीनिंग को भूलते गए। बहुत सुंदर मीनिंग थी। उदाहरण के लिए अभी हम उस समय पर हैं कि कुछ दिन पहले गणेश फेस्टिवल जो 10 डेज लॉन्ग होता है वो पूरा हुआ, और अभी आने वाले दिनों में 10 डेज फेस्टिवल दुर्गा फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। हम अभी उस समय पर हैं। इधर एक 10 डेज फेस्टिवल गणेश फेस्टिवल पूरा हो गया, अभी इधर 10 डेज फेस्टिवल दुर्गा फेस्टिवल आरंभ होने जा रहा है। तो क्या कर रहे होते हैं उस फेस्टिवल में? गणेश जी की मूर्त स्थापित करते हैं, पंडाल बनाया मंदिर जैसा, उसमें मूर्ति को स्थापित किया। फिर और जब अंदर मूर्ति के पास गए, फिर पूजा करने, जब वो तो पहले आके कहीं से लाके स्थापित किया, फिर जब पूजा विधि होगी, जब अंदर जाना है चप्पल बाहर करो, जूते चप्पल बाहर करो, तब अंदर जाओ, टीका लगाओ, इधर भी टीका उधर भी टीका, आरती की थाली सजी हुई है, फूल रखे हुए हैं, दीप जगा हुआ है, अगरबत्ती वगैरह सब, आरती की थाली उठाई, गोल गोल घुमाते गए और वो आरती गाते गए। वो आरती क्या है? उसकी महिमा है। आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, यही होता है उसमें। और ऐसे ऐसे करते करते वो फूल नैवेद्य चढ़ाते चढ़ाते आरती पूरी होती है, श्लोक पूरा होता है, मन की एक इच्छा उसके सामने रख देते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और पूरे निश्चय से बाहर आते हैं, मैंने भगवान को अपनी विश रख दी है, भगवान मेरी विश पूरी कर देंगे, और निकल कर आ जाते हैं। फिर देखते हैं विश तो पूरी ही नहीं हुई, यही तो तरीका था विश को पूरा करने का, तो क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, विश क्यों पूरी नहीं हो रही है? और फिर विश जब पूरी नहीं हो रही है तो धीरे धीरे वहां से ट्रस्ट खत्म हो रहा है, और जब धीरे धीरे ट्रस्ट खत्म हो रहा है, नास्तिक बनते जा रहे हैं, तो इस बैटरी का क्या हाल होगा? कनेक्शन के लिए कोई है ही नहीं। सोच सकते क्यों आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है? इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड खूब नाम मान शान, घर पूरे भरे हैं, दल्लक के गद्दे पर नींद नहीं आती है, खाने को 56 प्रकार के व्यंजन है पर यह हजम नहीं करता है, टाइम देखने को सुंदर सुंदर घड़ी है पर सुंदर सुंदर बातों के लिए समय नहीं है। क्यों ऐसी हमारी स्थिति हो गई? क्यों हम अंदर से वीक हो गए? क्योंकि जितने भी रिचुअल्स थे ना, देवर रिमाइंडर। आज एक अलार्म क्लॉक हम रखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अलार्म क्लॉक? क्या मकसद है उसका? कि वो मुझे समय पर घंटी बजाए, जो मैंने टाइम सेट किया है उस सेट वाले टाइम पर घंटी बजा के मुझे रिमाइंड करा दे, दिस इज द टाइम जब आप उठना चाहते थे, उठ जाओ अभी। तो उस वो पर्पस था उसका, लेकिन मैंने क्या किया उस पर्पस के लिए? मैंने थोड़े दिन यूज किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये बीनो सवेरे सवेरे इतना आवाज करता है, नींद ही खराब कर देता है, और यूं उठाया और यूं मारा और उसको बंद कर दिया, और रोज टाइम सेट करता हूं, रोज सवेरे बंद करता हूं, रोज टाइम, व्हाट इज द पर्पस? पर्पस तो हुआ ही ना फुलफिल, रखना ही क्यों ऐसा अलार्म क्लॉक अपने पास? वो तो इसलिए था कि आपको रिमाइंड कराए और आप जागरूक हो जाएं, अगर आप जागरूक नहीं हो रहे, सिर्फ किए जा रहे, तो उस अलार्म क्लॉक का कोई पर्पस है? और ही आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो और अपनी भी नींद खराब कर रहे हो ना, कि कम से कम वो आवाज नहीं होता तो नींद बीच में टूटती नहीं, और एक लॉन्ग नींद होती तो अच्छा रेस्ट होता, ये तो टूट गई ना बीच में। द सेम थिंग वी आर डूइंग देयर ऑल्सो। देखो जैसे कहा ना कि मंदिर में जाना है, पंडाल में जाना है, तो पहले रिमूव द शूज। तो वो रिमाइंडर था कि जब आप भगवान के सामने पूजा करने जाओ ना, रिमूव द ऑल लेबल्स यू हैव अक्वायर्ड एंड सो एंड सो। उस स्मृति के साथ मत जाओ भगवान के पास, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होने वाली है। सो रिमूव ऑल दोस लेबल्स। बॉडी को भी कहा ना, जूते चप्पल भी उतारो जुमड़े के, तो चमड़े की चीजें भी बाहर रखो। तो ये चमड़ी है ना, बॉडी क्या है, कहते हैं ना चमड़ी और दमड़ी का ही तो खेल चल रहा है पूरा। इस चमड़ी के आधार से ही तो दमड़ी कमाई जा रही है, नाम मान शम कमाया जा रहा है। तो जो भी चमड़ी के साथ, चमड़ी भी और चमड़ी के साथ जो कमाया, सब साइड में रखो। रिमूव द शूज, जो भी लेदर से ले चमड़ा है इसको साइड में रखो। आई एम नॉट सो एंड सो, हु एम आई, तो का अंदर जाते ही टीका लगाओ। हु एम आई एम अ सोल, द स्पिरिचुअल बीइंग। हम क्या कहते हैं, सेल्फ। इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए, इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीना चाहिए। कैन यू ट्रांसलेट इन हिंदी सेल्फ रिस्पेक्ट? हिंदी में क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस? दोनों ट्रांसलेशन में आपने सेल्फ के लिए क्या यूज किया? तो अगर सचमुच जीवन में आत्म सम्मान चाहिए तो मुझे आत्मा को समझना नहीं पड़ेगा, आत्मा को स्ट्रांग नहीं करना पड़ेगा। सचमुच जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो आत्मा को समझना पड़ेगा या नहीं? हम बगैर वो समझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो ही नहीं रहा है। जब खुद के पास ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, तो वहां से कहां से सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा? यही हालत हुई है ना आज हमारी। तो सेल्फ क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा परिचय दे जाता है शब्द सेल्फ। एस ई एल एफ, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। तो यहां जो स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, जो सेल्फ, जो सोल, जो आत्मा बैठी है, वहां ध्यान टिकाओ। जब टीका लगाओ, इट इज अ रिमाइंडर फॉर यू कि यहां जो आत्मा विराजमान है उस पर ध्यान टिकाओ, उस स्मृति में आ जाओ, उसकी जो क्वालिटी से उसको याद करके उसको खुद भी फील करो और उसको रेडिएट करो। उसके बाद कहा उधर भी टीका लगाओ। उधर भी टीका लगाओ मतलब उधर भी उस बॉडी को मत देखो, वो जो आत्मा विराजमान है उससे कनेक्ट हो जाओ, बीइंग टू बीइंग, सोल टू सोल, तभी तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी ना, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी मैच कैसे होगी? तो वो करो। और जब वो कनेक्ट हो जाओ, मतलब टीका उधर लगाया मैंने, कनेक्शन किया, अब थाली उठाओ आरती की और गाओ। मतलब वंस द कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, अब उसके साथ बातें करो, बातें ही तो है आरती, और क्या है? आप बात कर रहे हो ना, आप ये हो, आप वो हो, और उस बात के दरमियान आप उससे कनेक्टेड हो। आर गेटिंग कोई पॉइंट? तो आप उससे कनेक्टेड हो, तो जब कनेक्टेड हो वो फुल चार्ज बैटरी है ना, आपकी महिमा वही कह रही ना, फुल चार्ज बैटरी हो, तो फुल चार्ज बैटरी से आपका कनेक्शन होने से आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आप एम्पावर हो रहे हैं। अब जब आप खुद एम्पावर हो गए तो आपकी विश आप अपने आप फुलफिल कर सकते हो ना। वे आपकी अपनी विश जो थी, जो उनके सामने रखा, अपने आप उस प्रकार की मेहनत अपने आप कर सकते हो ना भी, क्योंकि मैं एम्पावर हो गई ना भी। दिस इज द वे। सो ऑल दिस रिचुअल्स एंड टूल्स दे वर टेलिंग अस समथिंग, बट हमने उसको सब कुछ भुला दिया, बस ये याद रखा, मंदिर में जाना है, चप्पल दूर करना है, ये करना है, लेकिन वो सब करते हुए मन में तो इधर उधर की बातें चल रही है, मन में तो इधर उधर की बातें चल रही है, जिसको ही कनेक्ट होना था वो ही कहीं घूमने चला गया है, तो वो एम्पावर ही नहीं हुआ, और एम्पावर ही नहीं हुआ तो विश भी पूरी नहीं हुई, तो फिर आप उसको ही दोष दे दो, फालतू है ये सब करना। तो रियल मीनिंग को समझना है जो हम भूल चुके हैं। वन स्टेप अहेड, कि वहां पे जब कनेक्ट हो रहे हो ना, उससे और एक स्टेप आगे जाना है। क्यों? वो फिर भी कौन है? जैसे गणेश जी, सपोज मैंने कहा कि फेस्टिवल गणेश जी बैठे हैं, गणेश जी कौन है? ही इज द सन। शास्त्रों में उसको सन के रूप में दिखाया ना, पुत्र के रूप में दिखाया ना, मीन्स ही इज नॉट सुप्रीम, ही इज नॉट सुप्रीम, वो परम नहीं है, वो भी एक आत्मा है, भले फुल चार्ज बैटरी है लेकिन परम आत्मा तो नहीं है ना, मतलब उसने भी बैटरी कहां से चार्ज की। तो वो स्टेप उससे और आगे बढ़े कि उसको देखते देखते ये भी स्मृति में लाए, ही इज द सन ऑफ शिवा, द वन हु इज अनबॉर्न, वन हु इज पावर हाउस, और उसकी भी तो वही क्वालिटी है ना, तो मैं ऑलरेडी अपने आप को शांति प्रेम में लाई थी, तो मैं उसको याद करती हूँ, तब उससे कनेक्ट हो जाती हूँ, उससे कनेक्ट हो जाती हूँ, और जब उससे कनेक्ट हो जाती हूँ तो मेरी आत्मसमृति को चार्जिंग मिल रही है, और धीरे धीरे क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और तब फिर जब रियल फील्ड में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम धीरे धीरे पाएंगे कि पहले तो मैं सिर्फ 2 मिनट ही टिक पाता था, अभी थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5, स्लोली स्लोली ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना आगे, सीढ़ी भी ऐसे ही चढ़ेंगे ना, एक एक से, ऐसे थोड़ी यहां से नीचे से ऊपर चले जाएंगे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो द मोर यू प्रैक्टिस दिस, मोर योर सोल कॉन्शियसनेस विल बिकम स्ट्रांग। तो एक स्टेप जो आगे कहा हमने कि उससे कनेक्ट हो जाना है, क्यों? क्योंकि जैसे पावर हाउस है, पावर हाउस से बिजली आ रही है, मुझे मेरे घर में चाहिए तो डायरेक्ट तो नहीं आएगी ना मेरे पास, मीटर लगाना पड़ता है, घर के बाहर कोई एक कोने में मीटर लगाया जाता है, फिर उस मीटर से कनेक्शन लेके अलग अलग जगह पर जहां जहां चाहिए वहां पे हम लगाते हैं, फिर वो एक प्लग बोर्ड लगा देते हैं, सनमाइक का बना होगा, उसके ऊपर बटन्स होंगे, फिर उसमें अगर बहुत ढेर सारी लाइटें हैं, पंखे हैं ना, तो याद नहीं रहता है ना, तो लिख देंगे, व्हाइट लाइट का W लिख देंगे, रेड लाइट का रेड लिख देंगे, फैन का F लिख देंगे, मीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए लिख देंगे। तो पावर हाउस से तो बिजली कंटिन्यूस आ रही है, पावर हाउस से बिजली कंटिन्यूस आ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मुझे जब जरूरत है तब बटन ऑन करो, जब जरूरत नहीं है बटन को ऑफ रहने दो, लेकिन जब जरूरत है तब तो ऑन करेंगे तो सुविधा मिलेगी ना, आपको नहीं, मैंने कनेक्शन ले लिया और अपने आप लाइट आ जाएगी, ऐसे हो सकता है क्या? क्योंकि आपने वो सिस्टम बना के रखा है ना बंद चालू का, तो आपको चालू करना पड़ेगा, तो जब वो आप चालू कर रहे बटन, तो उस बटन किस क्वालिटी का है, सनमाइक किस क्वालिटी का है, दैट डजंट मैटर, वो करेंट मैटर्स। अगर वो बटन बहुत सुंदर है, सनमाइका का प्लाईवुड बहुत सुंदर है, मैं उसको ही देखते रहूं, लाइट आ जाएगी क्या, आ जाएगी उसको नहीं, वो करंट तार अंदर कॉपर वायर से कनेक्ट होना चाहिए, और फिर वो वाला कॉपर वायर उसका वाला पावर हाउस से कनेक्ट होना चाहिए। दिस इज हाउ, मैं यहाँ टीका लगाऊं, मैं वहां टीका लगाऊं, कनेक्ट हो जाऊं, फिर यहाँ कनेक्ट होते होते उस शिव परमात्मा से कनेक्ट हो जाऊं,
तब जाके मेरी बैटरी चार्ज होगी। रिचुअल्स दुर्गा फेस्टिवल को देख लो, कलश स्थापन करते हैं, क्या करते हैं, कलश स्थापन। और अगर आपने नोटिस किया होगा, कलश भी दो प्रकार के हैं। एक कलश है जिसके ऊपर नारियल रखा है, एक कलश है जिसके ऊपर दीपक रखा है। वाह, ऐसा क्यों है, कभी सोचा, सोचा ही नहीं ना, बस मुझे तो मन में दुनियादारी की बातें चलाना है और जाके रिचुअल परफॉर्म करके आ जाना है और फिर बोलना है कुछ विश पूरी नहीं होती, सब फालतू है, सब ढकोसले है। हमने सब कुछ भुला के बैठे, जो चाहिए था उसको मिस करके बैठे। वो तो सिर्फ रिमाइंडर थे, हमने सिर्फ रिमाइंडर को पकड़ लिया, घड़ी को पकड़ लिया और टाइम सेट किया, फिर बंद करके रख दिया, फिर बंद करके रख दिया, तो उठे ही नहीं ना अब तो जो कलश की बात कर रहे थे, तो वो कलश के ऊपर दिया क्या याद दिला रहा है कि जब भी आप ये स्थापन करने जाओगे, इट इज अ रिमाइंडर फॉर यू कि ये शरीर गर्दन तक कलश, गर्दन तक क्या है, कलश है, और ये ऊपर उसमें दिया है, और उस दिए में ये ज्योति जग रही है, और उसको देखते देखते इस ज्योति पर ध्यान केंद्रित कर लेना, और इस ज्योति पर ध्यान केंद्रित करते करते उस ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना, और उस ज्योति पर ध्यान केंद्रित करते करते उस ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना। पर हमने किया ये, हमने किया ये, लेकिन टीका जरूर लगाया हमने, हमने कलश जरूर रखा, दिया जरूर जलाया, और इधर मन तो इधर उधर घूम रहा था, मन तो इधर उधर घूम रहा था। एक में नारियल रखा, क्यों, अगेन यहां तक कलश शरीर, यहां तक कलश, ये खोपड़ा नारियल, और उसके अंदर रियल गिरी आत्मा। नारियल बोलते हैं ना, ना प्लस रियल, जो अनरियल है वो एक खोपड़ा है, मींस बॉडी कॉन्शियसनेस, और जो रियल है वो आत्मा, सोल कॉन्शियसनेस। तो जब तक इस नारियल को नहीं फोड़ोगे ना, तब तक सुख शांति जीवन में नहीं, तब जब तक वो नारियल को नहीं फोड़ते, वो गिरी खाने को मिलती है क्या। श्री फल कहते हैं नारियल को, श्री फल, कि जो सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है, लेकिन वो श्री फल भी तोड़े बिना हाथ में नहीं आएगा, वो गिरी। तो ऐसे ही ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो लेकर बैठे हो ना, इसको तोड़ो, मतलब इसको भुला दो अभी, और रियल आत्मा के प्रति ध्यान केंद्रित करो, और उस रियल आत्मा के अंदर ही तो सुख शांति है, आपको बाहर कहीं नहीं जाना है। तो जब आप खुद ही फील करोगे, उसमें स्टेबलाइज होके अपने आप को रेडिएट करोगे, तो आप तो क्या, आपके जीवन में तो क्या, औरों के जीवन में भी सुख शांति आ जाएंगी, आपका प्रेजेंस औरों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ जाना है कि घर में सुख शांति चाहिए, जाओ मंदिर में नारियल फोड़ के आओ, लेकिन हम बॉडी कॉन्शियसनेस को नहीं फोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे हम, उसके बिना कैसे जिएंगे। आई एम सो एंड सो इतना पकड़ के रखते हैं, आई एम सो एंड सो, कि रिटायर्ड होने के बाद भी विजिटिंग कार्ड विल से आई एम एक्स सो एंड सो। आप रिटायर हो गए ना, दिख रहा है आई एम सो एंड सो से कितना अटैचमेंट है। जब इतना अटैच होके रहेंगे, जो चला भी गया है, अभी बॉडी तो फिर भी है, चली नहीं गई है, जो चला भी गया है उसको पकड़ के बैठे हैं, तो सोचो हम रियल कॉन्शियसनेस से कितना दूर। तो जब रियल कॉन्शियसनेस से, उस आत्म स्थिति से बहुत दूर है, तो कहां से सुख शांति जीवन में आएगी, आनी ही नहीं है फिर तो। और इसीलिए सदियों से हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ग्रंथों ने सिंपल मेथड दी, हे मानव तुझे जीवन में सच्चा सुख शांति अनुभव करना है तो एक ही काम कर, तू अपने भीतर झांक, अर्थात अंदर में जो आत्मा विराजमान है उस पर ध्यान केंद्रित कर और तू पाएगा कि जिस सुख शांति को पाने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, सुबह आंख खुलती नहीं है, रात आंख बंद होते तक इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर जैसे ही ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि इधर सोर्स है ना, सोर्स ही नहीं है तो कैसे प्राप्ति होगी। वो कहते एक व्यक्ति को, एक अच्छा हट्टा कट्टा रेसलर तो नहीं था पर रेसलर की तरह हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा, लगेज के साथ उतरा स्टेशन पर, गया टैक्सी वाले के पास, कहा मुझे एयरपोर्ट पर जाना है, कितना लोगे? उसने कहा 300 रुपए लेंगे। कहता है इतना पास में तो एयरपोर्ट है, उसका 300 रुपए लूटते हो तुम लोग यात्रियों को। ऐसा कहके सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही उठाऊं, और खुद ही उठा के चल पड़ा। थोड़ी देर आगे जब बढ़ा तो यही टैक्सी वाला उसको फिर दिख गया। इसने सोचा चलो आधा तो रास्ता पार कर गए हैं, अब तो पैसे कम हो जाएंगे, पूछ ही लेता हूँ। पूछा टैक्सी वाले से कि भाई देखो मैं आधा रास्ता तय करके आया हूँ, अभी बोलो कितना लोगे? कहते 500। ये क्या भाई, मैं आधा रास्ता पार नहीं किया था तब 300 बोला और अभी 500। टैक्सी वाले ने बड़े प्यार से बड़े शांत स्वर में कहा, ओ महानुभव, आपने बेशक आधा रास्ता पार किया है लेकिन एयरपोर्ट की विपरीत दिशा में पार किया है, एयरपोर्ट तो इस दिशा में है। हमारा भी वही हाल है, सुबह से रात तक क्या नहीं मेहनत कर रहे हैं हम जीवन में सुख शांति लाने के लिए, पर दिशा ही गलत हो गई ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में रह रह कर सब कुछ कर रहे हैं। परमात्मा हमें कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाओ, आत्मस्थ हो जाओ, आत्मस्मृति में आ जाओ, अपने स्वरूप को देखो, उस ज्योति को देखो, उस ज्योति का जो गुण है शांति प्रेम खुशी उसको फील करो, रेडिएट करो, तो आप तो उसी क्षण सुख शांति का अनुभव कर लोगे। हमने क्यों गाया परमात्मा को तमसो मा ज्योतिर्गमय, लाइट नहीं है क्या, बैठे हैं ना लाइट में, लाइट में बैठे हुए हम कह रहे हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, मूर्ख है या नहीं है? नहीं, ये किसी और लाइट की बात थी कि ये शरीर रूपी कुटिया में ये आत्मा रूपी दीपक अभी बुझा हुआ है तो अंधेरा है ना, अंधेरा है ना इस कुटिया में, अभी इस दीपक को जलाने के लिए उसको प्रार्थना की जा रही थी कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सदगमय, कि ये शरीर तो असत्य है, एक दिन खत्म होने वाला है, लेकिन जो सदा कायम है, जो सत्य है, उसकी ओर मुझे ले चल, आत्मा की ओर आ जाओ। मृत्युम मा अमृतमगमय, ये शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होगा, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाली है उस ओर मुझे लेके चलो, तो कौन है वो? आत्मा। तो सदियों से हम प्रार्थनाएं करते आए लेकिन अर्थ नहीं पता, सिर्फ रटे जा रहे। परमात्मा आके हमें सही सही अर्थ बताता है हर चीज का कि बच्चों यहाँ पे ध्यान टिका दो, तुम्हारी ये प्रार्थना फुलफिल हो गई, आप अंधकार से रोशनी में आ गए, आप असत्य से सत्य में आ गए, आप मृत्यु के भय से अमृत को प्राप्त कर लिया आपने, और उस स्थिति में रहकर जीवन का हर कार्य करो, तब जाके जीवन में खुद भी सुख शांति अनुभव करोगे और दूसरों को भी अनुभव कराओगे। हम क्या कर रहे हैं? मंत्र जाप कर रहे हैं। What was the real meaning of mantra chanting? मंत्र चैंटिंग का पर्पस था कि मंत्र को चैंट करते करते या कॉन्शियसनेस में जो हलचल चल रही है उसको स्थिर कर देना। मंत्रणा का अर्थ ही होता है ना, ऐसी सलाह, ऐसा राय, ऐसा मशविरा जिससे मन में चलने वाली हलचल क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। अब मंत्र का अर्थ पता नहीं है, मैकेनिक भी में रट रहे हैं, तो ये तो स्थिर होता ही नहीं है, ये तो और उछल कूद मचाता है। रियल मीनिंग तो ये थी कि उस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ जो कॉन्शियसनेस में हलचल चल रही है उसको स्टेडी बना देना, और स्टेडी बनाकर रियल कॉन्शियसनेस की तरफ मूव हो जाना, आत्मस्थिति में आ जाना, और आत्मस्थिति में आकर आत्मा के स्वधर्म को फील करना, रेडिएट करना और परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। तो वहां से पावर मिलती, वहां से पावर मिलती, आई हुई सिचुएशन को मैं इजीली हैंडल करता, आई हुई सिचुएशन को इजीली हैंडल करता, पर नहीं, हम तो रटने में ही लगे हुए और इसलिए उस मंत्र जाप की भी रिजल्ट्स नहीं आ रही है। तो हमने मूर्तियों के सामने वंदना की, हमने मंत्रों का जाप किया, और क्या किया हमने, मालाएं फेरी। अब माला फेरने का पर्पस क्या था, कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा, माला फेरत युग भय गया न मन का फेर, अब कर का मण का डार के मन का मण का फेर। व्हाट वाज द पर्पस, इसमें बता दिया उसने कि माला फेरत युग भया गया न मन का फेर। तो वास्तव में माला फेरने का, माला के एक एक वो मणके को फेरने का मकसद ही ये था कि जैसे जैसे माला का एक एक मणका फेरते जाऊं वैसे वैसे मेरे मनोभाव जो निगेटिव की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ फिरते जाएं, मैं नकारात्मक से सकारात्मक तक की हो रहा हूं, मेरे मन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। लेकिन चूंकि उसका अर्थ मालूम ही नहीं था कि माला क्यों फेर रहे, हमको लगा सिर्फ मणके ऐसे ऐसे फेरते जाओ और मन में तो इधर उधर की बातें चलाते जाओ, मैंने इतना माला का जाप कर लिया अब भगवान मेरे से खुश हो जाएंगे और मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर हुआ नहीं ऐसा। तब कहा कि इसको डाल दो, अभी जिस पर्पस से वो बनाया गया था वो पर्पस ही अगर आपने समझा नहीं तो उसको पकड़ के रखने का मतलब क्या। स्वयं संत कबीर ने खुद का डाल दो, उसको साइड में रख दो, मन का मन का फिर। तब भगवान भी यही कहते हैं कि बच्चों भक्ति मार्ग में जो कुछ भी साधन कर्म कांड थे उनके पीछे तो इतनी ब्यूटीफुल मीनिंग थी, इतनी सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण मीनिंग थी, आप उसको बुला के सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, अच्छा है उन टूल्स को, उन कर्मकांड को साइड में रख दो। और अभी मैं तुमको सच बताता हूं कि उसका जो पर्पस था डायरेक्ट उस पे आ जाओ। पर्पस था टीका लगाने का कि आत्म ज्योति की तरफ देखे, तो अब टीका न भी लगाओ लेकिन समझ आ गई, समझ के आधार से ध्यान टिकाओ और आत्म ज्योति को जागृत करो। जब तक ये ज्योति जागृत नहीं होगी तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो कैसे पूरा होगा, और ज्योत से ज्योत ही नहीं जगेगी तो प्रेम की गंगा बहेगी कैसे। हर दिवाली पे हम लोगों ने कितने दीपक जला लिए होंगे, लेकिन संसार में प्रेम की गंगा बह रही है, नफरत की गंगा बह रही है, क्यों? जो सचमुच ज्योति जगानी थी वो तो नहीं जगाई हमने, हमने भौतिक दिए को उठा के जला दिया। वो तो रिमाइंडर था कि जब वो करो तुरंत इधर की याद आ जाए आपको। तो भगवान अभी कहते मंत्र जाप छोड़ो, मंत्र का असली अर्थ था अपने आप को सलाह मशविरा दो और उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, एम्पावर हो जाओ। तो भगवान कहते हैं अपने आप को हमेशा इस स्मृति में रखो कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं किसकी हूं, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा कौन है, सर्वशक्तिवान है। अब जिसका पिता सर्वशक्तिवान तो बच्चा कैसा, बच्चा कैसा, वो भी शक्तिवान। तो जब तुम भी शक्तिवान हो गए तो आने वाली समस्या आपसे बड़ी हो सकती है क्या? हो सकती है बड़ी, तुम बड़े हो गए तो। करना तो ये था, लेकिन हमने नहीं किया, हमने मंत्र जपते गए और समस्या को बड़ा बनाते गए, जबकि करना ये था अपने को स्मृति में रख के अपने को ऊंचाई पे लेके जाना था और उस ऊंचाई पे जाके उस समस्या को चींटी के रूप में देखना था, ये क्या है, यूं नहीं पड़ जाएगी। क्योंकि बंबई जैसे शहर में आप चले जाओ, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो जाओ बहुमंजिला मकान में और बाहर में देखो एक कार खड़ी है, देखा? फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, देखो अभी, देखा? नेक्स्ट पे चलते जाओ और देखते जाओ, टॉप फ्लोर 50वीं फ्लोर पे चले जाओ और अब देखो उसको। अब वापस नीचे आते आते देखते जाओ और ग्राउंड फ्लोर पे आके देखो क्या हुआ, देखा आपने? दिखाई देती है पर होती नहीं है ना, बस यही है। समस्या की अपनी कोई साइज नहीं होती है, मैं किस ऊंचाई पर हूं, मैं अपनी मेरी शक्ति किस लेवल की है, उसके आधार से समस्या की साइज हम डिसाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर गीत है हमारा, मुश्किलों को ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये स्मृतियां अपने आप को दिलाओ, ये है सच्चा मंत्र जाप। अपने आप को याद दिलाओ मैं कौन हूँ, मैं आत्मा किसकी संतान, सर्वशक्तिवान की, तो फिर मैं क्या, मैं भी उसके जैसे सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो फिर ये समस्या क्या चीज है। तो ये रियल मंत्र जाप है, वो जो पूजा बताई वो रियल की, इस प्रकार से बॉडी कॉन्शियसनेस को रिमूव करो, टीका लगाओ और मन को मणका फेर रहे, इधर का मणका फेरो कि मुझे परिवर्तन, पॉजिटिव, अब तक मैं जिनके लिए भी निगेटिव सोचती आई साइड, अब मुझे परिवर्तन करना है, हर एक के लिए पॉजिटिव, हर व्यक्ति के लिए, हर परिस्थिति के लिए, स्वयं के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे पॉजिटिव दिशा की तरफ चलना है। ये है सच्चा माला फेरना। और क्या करते हैं हम भगवान के नाम पर, वो यज्ञ हवन कुंड रचते हैं, है ना? करना व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द हवन, कि उसमें वो सब चीजें स्वाहा कर दो जिससे वातावरण की शुद्धि हो जाए। और वो एक रिमाइंडर था फिजिकल प्लेन पे, वो रिमाइंडर यहाँ के लिए था कि आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज, ओरिजिनल कलर व्हाइट है, प्रेम शक्ति खुशी उसके ओरिजिनल गुण है, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते रहते हमने उसके ऊपर दाग चढ़ा दिए, किससे, किसके, गुस्से के, नफरत के, ईर्ष्या के, ये वाले संस्कार चढ़ गए उसके ऊपर। तो आत्मा जो ओरिजिनल व्हाइट है वो घिर गई, उसका वातावरण कैसा हो गया, निगेटिव। उस निगेटिव वातावरण को शुद्ध करना है। तो वहां पे जो हवन कर रहे थे वो रिमाइंडर था कि इधर आत्मा जो ओरिजिनली शुद्ध है लेकिन उसके चारों तरफ अशुद्धियां आ गई हैं, उसको स्वाहा करो तब जीवन में शांति आएगी। लेकिन हमने उधर स्वाहा स्वाहा करते गए और इधर तो स्वाहा स्वाहा करते समय भी इसके उसके लिए निगेटिव सोचते बैठे रहे, तो और ही निगेटिविटी बढ़ाते गए। यही किया, गंगा स्नान करने गए, क्या पर्पस था गंगा स्नान करने का, साफ स्वच्छ हो जाएंगे, लेकिन वहां पर भी जाके पी के आ जाते, गाली गलौज करके आ जाते, साफ हुए और गंदे हुए, ये साफ की बात नहीं थी, आत्मा की शुद्धि की बात थी। लेकिन हम शुद्ध होने के बजाय और ज्यादा अशुद्धि का परसेंटेज और ज्यादा बढ़ा के आते। तो वो एक रिमाइंडर था कि ज्ञान गंगा में रोज डुबकी लगाओ, तो रोज रोज ज्ञान गंगा में जब डुबकी लगाओगे तो ज्ञान की जो टिप्स मिलेगी उसको प्रैक्टिकल में जब उतारते जाओगे तब तो वातावरण शुद्ध होगा ना, आत्मा शुद्ध बनेगी ना। और क्या कर रहे थे हम भगवान को याद करने के नाम पर? तीर्थ यात्राओं पर जा रहे थे, चार धाम कर रहे थे। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट? उसका एकमात्र पर्पस था रोजमर्रा की जिम्मेवारियों से, काम काज से अपने आप को थोड़े समय के लिए फ्री कर देना, और रोज जहां रहते वहां का जो वातावरण है उस वातावरण से भी अपने को फ्री करना, और ऐसे तीर्थ स्थान पर जाना जहां मेरे को कोई जिम्मेवारियां नहीं है और जहां का वातावरण हाई फ्रिक्वेंसी वाला है। लेकिन क्या किया हमने वहां पर जाकर भी? आज तो मोबाइल है, वहां पर भी जिम्मेदारियां कैरी कर रहे हैं, कर रहे हैं, और वहां का भी माहौल आज कैसा हो गया है? हम जो सोच के गए थे वैसा नहीं है। तो भगवान कहते वास्तव में थोड़ा समय रोज तुम्हें अपने जिम्मेवारियों से मुक्त होकर एक ऐसे वाइब्रेशन में, एक ऐसे धाम में जाने के लिए रिमाइंडर था कि तुम आत्मा जब अपने परम धाम से आई थी, अशरीरी आई थी, मतलब शरीर लेकर नहीं आई थी, तो अपने आप को उस आत्म स्वरूप में लेकर आओ और उस धाम में पहुंच जाओ कि जहां उस धाम में सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाइब्रेशन है? शांति का वाइब्रेशन है, कि जहां जाके आपको काम काज कुछ नहीं करना है, आपको वहां जाके उपस्थित होकर वहां के शांति के वाइब्रेशन से अपने आप को भरपूर करके अपने को एक विश्रांति की स्टेज में लेकर आना है। और जब गहरी विश्रांति होती है फिर काम पे लगो। कैसा होता है? सब कुछ अच्छे से करते हैं ना, प्यार से, नहीं तो चिड़चिड़ होके करते थे। दिस वाज द रियल मीनिंग, लेकिन हम सब भुला के बैठे, और इसलिए जो रियल मीनिंग है उसको साइड कर दिया। उसका रियल फोकस तो मन था, लेकिन हमने तन और धन, वाणी और कर्म पे लगा दिया। भाई वाणी से महिमा करेंगे, लगाना था मन। हम आपके प्रति कुछ कर्म करेंगे, लगाना था मन। तन लगा दिया, धन लगा दिया, पर लगाना था मन। तो मन को छोड़ के हमने सब कुछ किया उसके लिए, और इसलिए मन की हीलिंग नहीं हुई, इसलिए मन शक्तिशाली नहीं हुआ, और इसलिए जो रिजल्ट चाहिए थी वो रिजल्ट हमें मिली नहीं। तो परमात्मा कहते हैं वो सब साइड पे रखो, वो तो रिमाइंडर्स थे। वो रिमाइंडर जिस चीज के थे उस पे आ जाओ, पकड़ो। तो डायरेक्ट अपने आप को आत्मा समझो। तो कनेक्शन कैसे, क्या है विधि? तो चार बातें होती है। परिचय चाहिए किसी को याद करने के लिए, फिर क्या चाहिए उसका? संबंध चाहिए उसके साथ। तो परिचय हमको अच्छी से मिल चुका है, आत्मा का परिचय भी मिला है, परमात्मा का भी परिचय मिला है। दूसरा है संबंध। हम उसको सिर्फ गाते रहे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन निभाया नहीं। निभा तो दूसरों से रहे और गा उसको रहे। अब भगवान कहते मुझे गाओ मत, अभी निभाओ उस संबंध को। निभाओ मतलब संबंध जोड़ो, सिर्फ गाते मत बैठो, और संबंध जोड़ के उस संबंध को अच्छी से स्थापित करो। और संबंध को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट जो होता है वो है प्रेम। संबंधों की नींव किस पर खड़ी है? प्रेम और सम्मान और ट्रस्ट, विश्वास। ये तीन मूल चीजें हैं एक अच्छे रिलेशनशिप के। और अगर ये तीन मूल चीजें आ गई ना हमारे रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप में हमारा एक दूसरे के प्रति समर्पण भी आ जाता है। प्रेम, सम्मान और विश्वास, लव, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, एंड वेर एवर थ्री आर टूगेदर डेडिकेशन विल बी देयर। समर्पण तो अपने आप हो ही जाएगा, तब वो जाके हमारा रिलेशन अच्छा बनेगा। तो आज दिन तक सिर्फ मुंह से गा के चले जाते थे लेकिन कोई संबंध रखा ही नहीं। अब परमात्मा कहते गाने की जरूरत नहीं है, ये विश्वास ट्रस्ट रखिए कि आत्मा का सच्चा माता पिता वही है। आज जिसको हम माँ बाप कह रहे हैं वो आत्मा के माँ बाप नहीं, वो शरीर के माँ बाप है। और वो सिर्फ एक जन्म के हैं और वो एक जन्म पूरा होते ही जैसे ही मैंने शरीर छोड़ा वो संबंध खत्म, जबकि परमात्मा के साथ आत्मा के सदा काल का संबंध है, चीर काल का संबंध है, सुखदायी संबंध है, आनंदमय संबंध है। उस संबंध को गहरा करते चलो, कैसे? प्रीत की रीत से उसके प्रति प्रेम बढ़ाते चलो। आज उसके प्रति हमारा प्रेम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आज हमने उसको याद करने के नाम पर याद सचमुच नहीं किया। हम तो मांगते ही रहे, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे विद्या दो, मुझे धन दो, मुझे बंगलो दो, मुझे नौकरी दिलाओ, मुझे लड़का दिलाओ, दो 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 बोलते गए, मांगते गए, मांगते गए, जबकि भगवान वो सब नहीं कर सकता है। आपका भी रोल अपने बच्चे के जीवन में क्या है? उसको समझ प्रदान करना, उस समझ को वो प्रैक्टिकल में जी सके, उसके लिए प्यार देना, उसके लिए सपोर्ट देना, उसके लिए शक्ति देना, और फिर करना बच्चे को है। आपने नहीं करना है हर काम उसके लिए। आप उसको तैयार कर सकते हैं एग्जाम हॉल में एंटर होते तक, लेकिन एग्जाम हॉल में एंटर के आपका रोल है वहां पे? अभी है रोल आपका? नहीं। चलो आपने तैयार किया भी था लेकिन फिर भी फेल हो गया, मायूस हो गया, उस मायूस स्थिति से उठाने के लिए फिर आपका रोल बनता है, फिर से ज्ञान दो उसको, फिर से उसको समझ प्रदान करो। आपका रोल तो इतना ही है ना, बाकी करना तो उसको है। तो परमात्मा भी सच्ची समझ देते हैं, प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, शक्ति देते हैं, कि जिस समझ को तुम खुद जीवन में इम्प्लीमेंट करके, इसको एम्पावर करके, जो जो चाहिए तुम अपने आप प्राप्त करो। फिजिकल चीजें तो वो नहीं दे सकता ना, क्योंकि उसका तो फिजिकल बॉडी ही नहीं है, वो तो निराकार ज्योति स्वरूप है। तो उस परमात्मा को मांगना छोड़ो। फिर लोग कहते, अच्छा हम चीजें नहीं मांगते, हम गुण मांगते हैं, भगवान शांति दे दो, हे भगवान शक्ति दे दो। राजयोग सिखाता है, परमात्मा सिखाता है, क्यों मांगते हो ये भी? ये तो तुम्हारे अपने गुण है ना, जो तुम्हारे अपने हैं वो मांगने होते हैं क्या? और फिर देखो तो सही, तुम्हारा मेरा संबंध क्या है, बाप और बच्चे का? एक बच्चे को एक एक चीज के लिए मांगना होता है क्या? बच्चे को क्या करना होता है? सिर्फ योग के बन जाना होता है, सिर्फ लायक बन जाना होता है। किस आधार से? मात पिता के गाइडेंस को फॉलो करते करते करते। और जब वो योग्य बच्चा बन गया, लायक बच्चा बन गया, सोचेंगे आप उसके लिए कि क्या करना है, वो आप सोचेंगे ना। बच्चे ने एग्जाम दी, समर की छुट्टियां मनाने चला गया नानी के घर में, समर की छुट्टियां पूरी करके आएगा, वो थोड़ी सोचेगा बैग स्कूल वगैरह की, वो तो आप करोगे ना जाके, वो तो आपने करना है ना। चिंता तो आपको है कि अभी उसकी स्कूल खुलेगी, उसको एडमिशन कराना है, उसके लिए बैग लाना है, स्कूल किताबें लेना है, यूनिफॉर्म लेना है, वो थोड़ी सोचता है। मैं तो समर की छुट्टियां पूरी करके आ गया, मेरा काम पढ़ने का है, चिंता तो आपको करनी है। लेकिन कब? जब आपका बच्चा लायक होगा तब, जब आपका बच्चा आज्ञाकारी होगा तब, जब आपका बच्चा योग्य होगा तब। तो परमात्मा भी यही कहते, मांगते क्यों हो? बच्चे होने के नाते तुम अधिकारी हो, उस अधिकार पने को सिद्ध करो, योग्य बनके अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि परमात्मा जो समझ प्रदान कर रहा है, हम क्या करें? उस समझ को प्रैक्टिकल जीवन में उतारें, तब हम योग्य बच्चे बनेंगे, तब हम देखेंगे मेरे जीवन में जो जो चाहिए था स्मूथली मैं आगे बढ़ती जाती हूँ और मेरी जरूरतें पूरी होती जाती है, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता है, सामने से मेरे पास सब कुछ उपस्थित हो जाता है, क्योंकि वो कर रहा है फिर हमारे लिए, क्योंकि हम उसके योग्य बच्चे बन गए हैं, हम एम्पावर्ड हो गए हैं। और फिर जितना हम योग्य बनेंगे और जितना स्वतः स्वतः वो हमारा ख्याल करता रहेगा, हमको प्राप्तियां होती रहेगी, हमारा प्यार और नहीं बढ़ेगा, हमारा प्यार और नहीं बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, उसके प्रति सम्मान बढ़ता जाएगा, उसके प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, उसके प्रति समर्पण भाव आ जाएगा। मेरे जीवन की नैया तेरे हवाले, तू चाहे इसको जिस दिशा में ले जाए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया वो कुशल मांझी है, वो मेरा सच्चा मात पिता है। तो इतना विश्वास जब हो तभी तो समर्पण आए, तो इतना विश्वास कि वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप धरती पर आकर समझ प्रदान कर रहा है, प्यार दे रहा है, पालना दे रहा है, उस समझ प्यार पालना के अंदर अपने जीवन को मैं मोल्ड करते चलूं। तो प्रीत की रीत दुनिया में, भारत के लिए तो कहते हैं प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, मैं भारत के गीत गाता हूँ। यहाँ पे लेकिन किसकी, भारत भूमि में ही तो आया है वो भगवान, तो उसके साथ प्रीत की रीत निभाओ तो देखना वो क्या करता है। प्रीत की रीत के उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, प्रीत की रीत के कारण से मीरा का जहर का प्याला अमृत में बदल गया। प्रीत की रीत के कारण श्री राम शबरी की कुटिया में आके जूठे ढेर खा गए। ये है प्रीत की रीत की कमाल। तो ऐसा प्यार उससे बढ़ाना है, उस संबंध स्थापित करना है। आपके पास लाखों की प्रॉपर्टी है लेकिन मेरा आपके साथ कोई संबंध नहीं, तो मेरा हक बनेगा क्या उस प्रॉपर्टी पे? तो परमात्मा तो सागर है गुणों का, खुशियों का, शांति का, प्रेम का, शक्ति का, लेकिन मेरे हक में तब आएगा जब संबंध स्थापित करूंगा। और एक तो संबंध स्थापित किया तो प्राप्ति तो होने ही लग जाएगी ना, प्राप्ति तो होनी। सागर में गागर डुबाई तो पानी भरेगा या नहीं भरेगा? संबंध स्थापित करना पड़ा ना गागर और सागर का, और जैसे ही संबंध स्थापित किया मेरी वो गागर भर गई। तो ये करना था वास्तव में हमें। अब इसको और एक सिंपल कर दूं मैं, फोन करते हैं हम किसी को, सबसे पहले जिसको फोन करना है उसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, सिर्फ यहाँ नहीं उसमें भी चाहिए, तभी तो आप उसको डायल करोगे। वंस यू डायल क्या होगा, रिंग जाएगी, रिंग जाने के बाद कॉलिंग, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग के बाद हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। तो कम्युनिकेशन में जितनी भी बातें करना है कर लो, जितनी भी प्यार भरी लेन देन करना है कर लो, और फोन को वापस रख दो, अपने कारोबार में चले जाओ। फिर याद आई, फिर फोन लगाया, ऐसे ही होता है। तो परमात्मा का भी कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए या नहीं चाहिए? तो क्या था उसका कॉन्टेक्ट नंबर? उसका सही परिचय। तो वो हमें मिल गया, अब हम डायल कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, मैं उस फ्रिक्वेंसी पे पहले लेकर आती हूँ अपने आप को, क्योंकि कहा ना मेरे फोन में वो होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे वो वाली फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जो उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो जब मैं उसमें अपने आप को आत्मस्थित करूंगी, वो फ्रिक्वेंसी रेडिएट करूंगी, तब जाके वो कनेक्ट होगी। वंस कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, अब मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करो उनके साथ। उतनी देर तक आप उसकी छत्र छाया में होंगे, उसकी एनर्जी को अपने आप अंदर में भरते रहे। तो मीठी मीठी बातें कौन से करोगे? जो उपकार उसने हम पर किया है। आज दिन तक तो फरियाद कर रहे थे, भगवान कहते हैं अभी धन्यवाद करना सीखो, जो मिला है उसका धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, आभार, शुक्रिया। ये भी शुक्रिया ना कि हमें हमारा सच्चा परिचय दिया उसने, ये बहुत बड़ी करुणा नहीं है उसकी? बहुत बड़ी करुणा है। तो उसको याद करो इस तरह। सो दिस इज द मेथड। सिंपल है या नहीं है? है ना सिंपल? हम कहां आसन लगाते थे, टीका लगाओ, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान ने आके कहा सिंपल, जैसे फोन लगाते हो बस मेरे को फोन लगाओ और आपका कनेक्शन हो जाएगा। मीठी मीठी बातें करो, एनर्जी एक्सचेंज करो और वापस आ जाओ। तो फोन में हम क्या करते, मीठी मीठी सिर्फ बातें नहीं करते, अपने जीवन जीवन की गाइडेंस के लिए पूछते हैं और उधर से गाइडेंस मिलता है। टू वे कम्युनिकेशन, जो मेडिटेशन बोला ना, राजयोग मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन इज अ मेडिटेशन वे टू वे कम्युनिकेशन हैपन्स। हम भी बोल रहे हैं, वो भी हमको गाइडेंस दे रहा है और उसकी गाइडेंस लेते लेते जीवन को आगे बढ़ाते चलो। फिर आगे बढ़ा, फिर फोन किया, फिर ये बात है फिर पूछो, फिर ये बात है फिर ये पूछो। बात आई तो भी पूछो और बात नहीं है तो भी उसको धन्यवाद करते रहो। जो कुछ लिया है आपका है, उसके उपकारों को याद करो। यही तो कर रहे थे महीनों में, तो उसके उपकारों को याद करो, उसकी मदद को याद करो। वो मदद करने आ गया, हम सदियों से उसको पुकारा, हे भगवान हमें मदद करो। वो मदद करने आ गया, ज्ञान दे दिया उसने। अब मेरा फर्ज है कि मैं उस ज्ञान को क्या करता हूँ। वो है ना मुट्ठी भर, वो किसान की कहानी आती है ना, किसान ने चार बेटों को बुलाया, मुट्ठी भर धान दे दिया और कहा जो मर्जी करो। फिर कई दिनों के बाद फिर पूछा बुला के, क्योंकि उसको पता करना था हु इज सेंसिबल, क्योंकि जो सेंसिबल होगा उसको मैं सब जिम्मेदारियां सुपुर्द करके जाना, क्योंकि वो भी उसकी उम्र हो रही थी। तो चारों को बुलाया कि बेटा मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को धान दिया था मुट्ठी भर, मैंने तो कहा था जो मर्जी करो, लेकिन देखो तो सही आपने क्या किया। एक बेटा कहता है पापा इतना सा तो था मैंने चिड़िया को खिला दिया। दूसरा बेटा कहता है इतना सा तो था मैंने धान मतलब चावल निकाल के खाना पकड़ा था उसमें डाला खत्म कर दिया। तीसरा कहता है पापा जो आपने दिया ना ये देखो बॉक्स में मैं लेके आया हूँ, और चौथा तो टोकरा भर के लाया था। तो पिताजी कहते हैं बेटा मैंने तो इतना सा दिया था। हाँ पिताजी आपने तो इतना सा ही दिया था, लेकिन मैंने इसको क्या किया, खेत में लेके गया, वहां बो दिया और इतना सारा मिला। आप कौन से बच्चे बनोगे? भगवान ने आपको भी इन तीन चार दिनों में मुट्ठी भर ज्ञान दिया है, आप कौन से बेटे बनोगे? कौन से बेटे बनोगे? हाँ फोर्थ वाले, शाबाशी दो अपने आप को। हम भगवान के सेंसिबल बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, तो भगवान फिर आपको अपने कार्य सौंपेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? पता है कौन सा कार्य है उसका? सदियों से हमने उसको हेल्प मांगी, अब वो हमसे हेल्प मांग रहा है। Do you know which help? कहता है बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, please, please bring self transformation. Because only when you bring self transformation, then my task of bringing the world transformation can be accomplished. आप जब तक परिवर्तन नहीं करोगे स्वयं का, विश्व का परिवर्तन नहीं होगा। और मैं धरती पर आया किस लिए हूँ? विश्व परिवर्तन के लिए। तो प्लीज मुझे आपके स्व परिवर्तन की मदद चाहिए। आर यू रेडी फॉर दैट? अगेन पैट योर सेल्फ, शाबाशी, भगवान का आज्ञाकारी बच्चा। किसके लिए कर रहा है वो? हमारे लिए। वो तो अजन्मा है, निराकार है। एक राजा को तीन मिनिस्टर थे। कितने मिनिस्टर? तीन। तीनों को बुलाया, कहा एक एक बैग उठा के जाओ और जंगल से अच्छे अच्छे फ्रूट्स इसमें भर के लाओ। तो एक मिनिस्टर ने तो राजा के आदेश को याद करते हुए सोचा ये राजा का आदेश है, डायरेक्ट बुलाकर कहा है, तो मुझे उसका 100% पालन करना है। तो फल चुनते समय पूरा ध्यान देता था कि बेस्ट क्वालिटी, और बेस्ट क्वालिटी से बैग को भरा। दूसरा मिनिस्टर, बेशक राजा का आदेश है, लेकिन राजा को इतनी फुर्सत है क्या कि मेरी बैग खोलेगा और नीचे से ऊपर तक एक एक को चेक करेगा? नहीं, जो दिखता है डालते जाऊंगा। और तीसरा तो बात ही मत पूछो, कहता राजा तो इतना बिजी रहता है, वो बैग खोलने वाला भी थोड़ी है। जो भी दिखता है घास फूस डालो, जंगल में इधर उधर कांटे लग रहे, काहे को मैं अपना ये कर रहा हूं, डालते जाओ। तीनों आए भर के, और सचमुच राजा ने किसी की बैग नहीं देखी। उसने तो यही सोचा जितनी बड़ी बैग होगी बाहर से दिखेगी राजा खुश हो जाएगा। तीनों अपनी बैग लेकर वापस आए राजा के पास, और सचमुच राजा राजा ने किसी की बैग नहीं देखी, सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया इनको 3 महीने के लिए जेल में डाल दो, और ध्यान रखना इनकी कोई व्यवस्था खाने पीने की आपको नहीं करना है। हाँ, बेशक ये जो अपना थैला भर के लाए हैं वो उनको दे दो। Got it? कि जो तो बेस्ट क्वालिटी का भरा ना, उसके 3 महीने आराम से कटे। जिसने थोड़ा ऊपर नीचे किया तो थोड़े दिन अच्छे फल खाया, थोड़े दिन बुरे खाया तो ट्रबल में रहा, और तीसरे का तो ये वास्तव में क्या है, ये आत्मा की बैग जो संस्कार भर के जाने वाले हैं। तो हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, इस आत्मा के अंदर से वो नेगेटिव वातावरण को फेंक दो और जो मेरे असली वाले गुण हैं उसको बढ़ाते जाओ, क्योंकि यही आत्मा अगले जन्म में संस्कार के रूप में लेके जाती मेरे काम। जो उसको कहा ना जेल में डाल दो, वास्तव में जेल क्या, आत्मा एक बार शरीर में आ गई तो जेल ही है ना उसके लिए, तो जो लेके आई है वही खाएगी, और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर भगवान कह रहा है बच्चों ब्रिंग सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज फॉर मी ओनली, तो तैयार है ना? ओके, तो हवन कर ले, हम नेगेटिविटी डाल दे बाहर, यज्ञ में भगवान को समर्पित कर दे, तभी तो वातावरण अच्छा होगा। तो चलिए अपना हाथ ऐसा कीजिए, और जो भी आत्मा के अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो मेरे ओरिजिनल गुण है उसको सराउंड कर रही है वो नेगेटिविटी, सब इसको यहाँ निकाल के लाओ। आत्मा रूपी तिजोरी में जो भी गंदा नेगेटिव मैला डर्टी व्हाटएवर इट इज जो इसको अशुद्ध कर रहा है, सब यहाँ निकाल के लाओ। ध्यान से कोने काने से कुछ भी छूट नहीं जाए, क्योंकि थोड़ा भी छूटेगा तो अंश वंश बढ़ा देगा। Can you see everything here? जो भी नेगेटिव है आज दिन तक इसके साथ उसके साथ, जो भी ऐसा नेगेटिव चल रहा है सब यहाँ लेकर आए। अब मैं आत्मा, मेरे अंदर का ये कचरा परमात्मा पिता को सामने लाए, वो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा मेरे सम्मुख है, मेरे मन की तार उससे जुड़ी है और मैं उससे बात कर रही हूं। हे पिता परमात्मा, आपकी समझ प्राप्त करके मुझे बोध प्राप्त हुआ है, अब ये कचरा मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, ये आपको स्वाहा करता हूँ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब एम्पावर करेंगे, चले प्रैक्टिस करते हैं। तो बैठ चाहिए मेडिटेटिव पोज में, मस्तक सिंहासन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, 2 आंखों के मध्य मस्तक के बीचों बीच। मैं आत्मा ज्योति बिंदु चमक रही हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ, परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ। मैं आत्मा भी उस परम धाम की निवासी हूँ जहाँ मेरे शिव पिता परमात्मा रहते हैं। तो चलिए चंद पलों के लिए उस परम धाम यात्रा की ओर। देखें, अनुभव करें आत्मा दिव्य सितारा मस्तक से निकलकर ऊपर की ओर जा रहा है। पांच तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य चांद सितारों से भी पार, वो गोल्डन रेड लाइट वाली दुनिया में मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। इस गोल्डन रेड लाइट की दुनिया में मैं स्वयं को भी देख रही हूँ और सम्मुख अपने पिता परम ज्योति को भी। यही वो मेरे पिता परमात्मा है जिसके नाम पर मैं न जाने आज तक क्या क्या करती आई, लेकिन आज मेरे सौभाग्य की क्या कहने, मैं उसके सम्मुख उसके सानिध्य में उनके शुद्ध वाइब्रेशन को अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करें उनकी शांत और शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश करती है और मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। हे प्रभु पिता परमात्मा, आपका बहुत बड़ा उपकार है हम पर, जो मैं सब कुछ भूल गई थी उसे पुनः याद दिला दिया। सच्ची समझ, सच्चा प्यार, सच्ची शक्ति देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। मैं सदा सदा आपके उपकारों को याद करती रहूंगी, सदा सदा आपके सानिध्य में रहूंगी, सदा ही आपसे गाइडेंस प्राप्त करके जीवन की नैया चलेगी। फिर ये जीवन की नैया आपके हवाले है, आप कुशल मांझी है, आपके हाथ में नैया की बागडोर देकर मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। महसूस करें परमात्मा भी उधर से अपनी किरणें बिखेरते हुए मुझे मेरी प्रॉमिस के लिए हाँ हाँ कह रहे हैं। जी बच्चे, तुमने अगर वादा किया साथ रहने का तो मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ। बाबा, तुम्हारा हाथ और साथ सारा जीवन रहेगा मेरे साथ। इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ, उनकी शक्ति को अंदर भरते हुए, स्वयं को भरपूर महसूस करते हुए, उसके प्यार में अपने आप को प्रेम में भाव विभोर करते हुए, पिता मेरे साथ है ये महसूस करते हुए लौट आइए अपने पंच तत्वों की दुनिया में। देखें आत्मा सितारा नीचे उतर रहा है और उतरते उतरते भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास, एक नए उमंग के साथ कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की शिक्षा को प्रैक्टिकल करते हुए जीवन जीना है। ओम शांति।